राधिका तुरंत ही पलंग से नीचे उतरी और तेज कदमों से बालकनी की ओर जाने को हुई, पर अजय ने फुर्ती से आगे बढ़ते हुए उसके कलाई थाम ली, पूरे जोर के साथ उसे खींचते हुए पेट पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि राधिका कुछ समझ ही नहीं सकी, और जब तक उसने होश संभाला अजय उस पर हावी हो चुका था और उसका नाजुक वजूद अजय के भारी भरकम शरीर के नीचे दब चुका था। मत कीजिए ऐसा, आप हर्ट कर रहे हैं मुझे अजय, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैंने कहा छोड़िए मुझे। राधिका बदहवास से अजय को खुद से दूर धकेल रही थी, अपनी हथेलियों से उसके सीने पर दबाव बनाते हुए उसे खुद से दूर कर रही थी, उससे दूर रहने की कोशिश कर रही थी, खुद को उससे बचाने की कोशिश कर रही थी, उसका विरोध कर रही थी। अजय जो अपनी जिस्म की आग बुझाने के लिए तड़प रहा था, अब उसे परेशानी हो रही थी जिससे वो बुरी तरह से खींच उठा। अजय ने उसकी दोनों कलाइयों को बड़ी ही बेरहमी से अपनी हथेलियों में भींचते हुए पेट पर दबा दिया। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, हक है मेरा तुम पर, भूलो मत, पति हूँ मैं तुम्हारा, और पत्नी का फ़र्ज होता है अपने पति की ज़रूरतों, उनकी ख्वाहिशों का ख्याल रखना। अजय तो उसे अपनी जागीर समझकर उस पर हुक्म चला रहा था, आज उसके सर पर शराब के नशे के साथ हवस सवार थी। राधिका का उसे खुद से दूर करना उसके गुरूर को आहत कर गया था। जितनी ताकत उसने अजय को खुद से दूर करने के लिए लगाई थी, अब उससे दुगनी ताकत से अजय उसके विरोध को दबाने लगा था। राधिका पर ज़रा रहम नहीं किया था उसने, ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर किसी हैवान की शैतानी आत्मा घुस गई है जिसे बस अपनी भूख मिटाने से मतलब था। उसका क्रूरता भरा व्यवहार राधिका की हिम्मत तोड़ता जा रहा था। काफ़ी देर तक वो राधिका के लबों को चूमता और काटता रहा, उसके लबों से रिश्ते खून को चूसकर अपनी प्यास बुझाता रहा। राधिका की दर्द भरी सिसकियाँ उसके गले में घुट कर रह गईं। राधिका के लबों को आज़ाद करने के बाद अजय उसके गर्दन और कंधों को चूमते हुए काटने लगा। उसकी हथेलियाँ राधिका के जिस्म पर फिसलने लगी थीं। वो छटपटाती रही, उससे खुद से दूर करने की नाकाम सी कोशिश करती रही, उससे रहम की भीख मांगती रही, पर अजय किसी वाहनशी दरिंदे जैसे उस पर टूट पड़ा, जैसे राधिका उसकी बीवी नहीं गोश का टुकड़ा मात्र हो जिसे खाकर वो अपनी हवस मिटाना चाहता था। जितना राधिका उससे छूटने की कोशिश करती, वो उतनी ही निर्दयता के साथ उसके वजूद को अपने गुरूर और लालसा तले रौन देता। वासना की आग में उसने राधिका और अपने रिश्ते के वजूद को झुलसा दिया था। हार गई थी राधिका, पति रूपी इस हवस के पुजारी और वाहनशी दरिंदे से वो खुद को नहीं बचा सकी थी। उसकी दबी घुटी सिसकियों की आवाज़ उस बंद कमरे में गूंज उठी, जिससे अजय और उन्माद से गया और ज्यादा उग्रता दिखाते हुए उसके जिस्म को नोचने लगा, उसे दर्द देने लगा जो राधिका के लिए असहनीय हो गया था। उसने चादर पर अपनी मुट्ठियों को कस लिया, आंखों को कसके भींच लिया, रोकने की बहुत कोशिश की, पर भींचे लबों से भी दर्द भरी चीख निकल गई और झुकी पलकों के नीचे से बहते आंसू उसकी कनपट्टी भिगो गए। एक बार में अजय का मन नहीं भरा था, जब तक उसका मन संतुष्ट नहीं हो गया वो राधिका को तड़पाता रहा और अंत में अपने जिस्म की आग में राधिका के वजूद को झुलसाने, अपनी ख्वाहिशों के तीर से उसकी रूह को लहूलुहान करने के बाद जब उसका उसके जिस्म को नोचने से भर गया तो उसके ऊपर ही सो गया। राधिका किसी बेजान गुड़िया जैसे उसके नीचे दबी थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहाना चाहती थी, पर अब तो वो आंसू भी उसका साथ छोड़ गए थे। अजय के नीचे दबी वो भावहीन चेहरे के साथ सूनी निगाहों से सीलिंग को घूर रही थी। अजय ने आज उसके साथ सिर्फ पति पत्नी के बीच का संबंध नहीं बनाया था, बल्कि ब्रूटली रेप किया था उसका। ऐसी हैवानियत दिखाई थी कि देखने वाले की रूह कांप जाए। उसकी इस वक्त जो हालत थी उसे देखकर किसी पत्थर दिल इंसान की आंखों से भी अश्रुधारा बह जाए, और सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला, ऐसी निर्दयता से उसका रेप करने वाला, दरिंदे की सभी सीमाएं पार करने वाला, उसके वजूद को जिस्म की आग में झुलसाने वाला, अपनी हवस की पूर्ति के लिए उसे नोच कर खाने वाला कोई बाहरी दरिंदा नहीं बल्कि उसका अपना पति था, जिसे उसकी इज्जत की रक्षा करनी थी। उसी ने आज उसकी इज्जत, उसके स्वाभिमान को अपने गुरूर तले रौन डाला था। राधिका का चेहरा एकदम सपाट था, पर दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। सीने में एक तूफान कैद था जो अगर बाहर आता तो शायद अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाता। अजय के इस व्यवहार ने उसकी रूह को घायल कर दिया था, और दिल का दर्द इतना ज्यादा था कि उसके आगे शरीर में उठता दर्द उसे महसूस ही नहीं हो रहा था। वो कुछ देर यूं ही सूनी निगाहों से सीलिंग को घूरती रही, फिर पलकों को जरा झुकाया तो नज़र अजय पर गई, जो उसके सीने पर सर रखे, अपनी बांह को उसकी कमर पर लपेटे, पैर पर पैर चढ़ाए, अपने नीचे के आधे शरीर को रजाई से ढके और उसके जिस्म की नुमाइश करते हुए गहरी नींद में सो रहा था। अपनी लालसा की तृप्ति करके कितने इत्मीनान से सोया हुआ था वो। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही राधिका को उसकी हैवानियत याद आ गई, मन कड़वाहट से भर गया, चेहरे पर क्रोध, घृणा, हिकारत जैसे मिश्रित भाव उभर आए। कहते हैं किसी की कोई एक हरकत काफी होती है उसे किसी की नजरों से गिराने के लिए, और अजय की इस हरकत ने भी उसे राधिका की नजरों में गिरा दिया था। पति का जो मुकाम और इज्जत उसने उसको दी थी आज उसकी हवस की भेंट चढ़ गया था। मन में उसे लेकर कोई एहसास और कोई भाव शेष नहीं रहा था। अगर कुछ था तो वो थी घृणा, जो उसे अजय के साथ साथ आज अपने वजूद से भी हो रही थी। गंदी हो गई मैं, उसके जगह जगह से कटे लबों से धीमे से शब्द निकले और उसकी आंखें भर आईं। उसने अजय के नापाक वजूद को हिकारत भरी नजरों से देखते हुए उसको दूसरी ओर धकेल दिया। कपड़े तो उसके जिस्म पर भी नहीं थे, उस दरिंदे ने कुछ छोड़ा ही कहा था, सोचते हुए एक बार फिर उसकी आंखें छलक आईं। बैठने लगी थी, पेट के निचले हिस्से और पैरों के बीच जांघ में तेज दर्द उठा। अजय ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। अपनी खुद की बीवी के साथ इतना बुरी तरह पेश आया था कि राधिका ना उठने की हालत में थी ना बैठने की, पर जो दर्द अभी उसकी आत्मा को हो रहा था उसके आगे जिस्मानी दर्द शायद कुछ था ही नहीं। उसने सारा दर्द अपने सीने में दफना लिया, मुंह से एक आह तक ना निकलने दी, आंखों को आंसू बहाने की इजाजत तक नहीं थी। किसी तरह हिम्मत करके उसने अपने बिखरे वजूद को समेटा, सहारा लेकर बेड से नीचे उतरी, पर कदम लड़खड़ा गए। दर्द भरी सिसकी लबों से आजाद हुई और आंखें भी छलक आईं। उसने बेड से नीचे पड़े अपने शॉल को उठाकर खुद पर लपेटा, बिखरे कपड़े समेटे, अलमारी से दूसरे कपड़े निकाले और चीजों और दीवार का सहारा लेते हुए लड़खड़ाते कदमों के साथ बाथरूम में पहुंची। ठंडे मौसम में और रात के 4 बजे का वक्त, राधिका ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ी थी। पानी उसके सर से होते हुए पूरे जिस्म पर बिखर रहा था, वो सर से पैर तक भीग गई थी। इतनी ठंड में बर्फ सा ठंडा पानी उसके जख्मी वजूद पर फिसल रहा था, फिर भी वो उसके झुलसते वजूद को शीतलता पहुंचाने में नाकाम था। राधिका तो जैसे जिंदा लाश बन गई थी, न उसे दर्द का एहसास था न ठंड का। काफी देर तक वो शावर के नीचे बुदबनी खड़ी रही, जैसे अजय के स्पर्श उसके एहसास को मिटाना चाह रही हो, पर इसमें भी वो नाकाम ही रही। वो सब अब भी किसी चलचित्र की भांति उसकी आंखों के आगे घूम रहा था और उसका चेहरा चट्टान सा सख्त हो गया था। कुछ देर बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आई। अजय को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। दर्द अब भी बेहिसाब था। उसने शीशे में अपना अक्स देखा तो खुद को पहचान न सकी। रोने के कारण उसकी आंखें लाल होकर सूज गई थीं, होंठ भी सूजे हुए थे और जगह जगह से कटे हुए भी थे।
उसकी गर्दन, कंधे और सीने के उजागर हिस्से पर दांतों के बने लाल और नीले निशान अजय की हैवानियत की गवाही दे रहे थे। शरीर का ऐसा कौन सा अंग था जो घायल नहीं था, जहां दर्द नहीं हो रहा था? अपनी हालत देखकर उसकी आंखें छलक आईं, पर सिसकियों की आवाज बाहर ना आए इसलिए उसने अपनी हथेली से अपने मुंह को कस के दबा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। घड़ी ने सुबह के 6 बजाए तो लगातार बजते अलार्म से इरिटेट होते हुए अजय ने मिचमिचाते हुए अपनी आंखें खोली। सुबह के 4 बजे सोया था और नींद की खुमारी उसके सर पर सवार थी। आंखें भी कहां ठीक से खुल रही थीं। रात का नशा अब भी पूरी तरह से उतरा नहीं था, सो सर अलग दर्द हो रहा था। उसने आधी नींद में खींचते हुए राधिका को पुकारा, राधिका अलार्म बंद करो। राधिका, तुम्हारे इस अलार्म से मेरी नींद खराब हो रही है, अलार्म बंद करो। ऐसे ही कई बार उसने राधिका को आवाज लगाई, पर दूसरे तरफ से कोई जवाब ना आने पर अंत में उसने झुंझलाते हुए अपनी आंखें खोली। बेड पर खुद को अकेला पाकर उसने नींद में ही आगे बढ़कर टेबल पर पड़ा फोन उठाकर अलार्म बंद किया। अपने माथे पर बिखरे बालों को हाथ से सेट करते हुए वो उठकर बैठ गया। अब ध्यान अपनी हालत पर गया तो पल भर को चौंक गया। उसके सीने पर नाखून के निशान मौजूद थे, जो राधिका के संघर्ष की निशानी थी कि उसने अंत तक हर संभव प्रयास किया था खुद को बचाने का। अजय ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो धीरे धीरे रात की सारी बातें उसे याद आईं। ज्यादा नहीं पी थी उसने, इसलिए नशा भी ज्यादा नहीं चढ़ा था। जानता था कि उसने क्या किया है, और अब सब दोबारा याद आने पर भी उसके चेहरे पर कोई गिल्ट, पछतावा या आत्मग्लानी नहीं थी। वो इस तरह रिलैक्स था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और जो हुआ है उसमें कुछ गलत भी नहीं। उसने राधिका की तलाश में निगाहें घुमाई तो नज़र ड्रेसिंग टेबल से सटकर बैठी राधिका पर पड़ी, जिसने अपने पैरों को मोड़कर अपने सीने से लगाया हुआ था। अपनी बाजुओं को पैरों के इर्द गिर्द लपेटे वो घुटनों के बीच अपना चेहरा छुपाए बैठी थी। अजय की भौहें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं। उसने बेड से नीचे लटकते अपने पैंट को उठाकर पहनते हुए उससे सवाल किया, वहां बैठकर क्या कर रही हो तुम? राधिका ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसके शरीर में कोई हलचल हुई। राधिका, वहीं बैठे बैठे सो गई क्या तुम? अजय ने फिर से सवाल किया, पर रिजल्ट अब भी वही था, नील बटा सन्नाटा। अजय ने कुछ सोचा, फिर बेड से उतरकर उसकी ओर बढ़ने लगा, पर इससे पहले कि वो राधिका तक पहुंचता, राधिका ने अपना सर घुटनों के बीच से उठाया, अपनी भीगी आंखों की नमी अपनी हथेलियों से पूंछी और ड्रेसिंग टेबल का सहारा लेते हुए उठकर खड़ी हो गई। ये देखकर अजय चौंक गया, जब तुम जाग ही रही थीं तो ये सोने का नाटक क्यों कर रही थीं? तब से मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा था, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही थीं? हैरानी में गुस्सा और नाराज़गी खुली थी और ये नाराजगी तब और ज्यादा बढ़ गई जब राधिका ने एक बार फिर उसे और उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। राधिका से यूं इग्नोर होना उसे नागवार गुजरा था। मर्दाना गुरूर को जो ठेस लगी थी, फिर भला अहंकार पर चोट वो कैसे बर्दाश्त करता। बहरी हो गई हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूं? अजय गुस्से से उस पर लगभग चिल्ला ही दिया था, पर राधिका अब भी शांत और भावहीन ही नजर आ रही थी। उसकी इस खामोशी से अजय खींच उठा। कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? क्या हुआ है तुम्हें? सुबह सुबह मुंह फुलाकर क्यों घूम रही हो? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे? बोलते हुए उसने राधिका की बांह थामने के लिए हाथ बढ़ाया, जो अब भी उसकी बात बिना सुने वहां से जाने लगी थी। इससे पहले कि उसकी हथेली राधिका को स्पर्श करती, राधिका उसका हाथ झटकते हुए उसकी ओर पलट गई। छूइए मत मुझे। घायल शेरनी जैसे दहाड़ी थी वो। पल भर को अजय भी उसकी गुस्से से लाल आंखें देखकर डर गया।